इस अगली आयत का टॉपिक लिख लीजिए, निफाक के दर्जे। इंसान इस खूबसूरत ईमान से नीचे गिरकर फिर कुफर में कैसे ढलता है? आयत 137, इन्नल्लज़ीना आमनू, यहाँ वन लिख लें, वो लोग जो ईमान लाए, सुम्मा कफरू, फिर काफिर हो गए, सुम्मा आमनू, फिर ईमान ले आए, सुम्मा कफरू, फिर काफिर हो गए, सुम्मा ज़दादु कुफरा, फिर ज्यादा से ज्यादा होते गए कुफर में। क्या हाल होगा आखिर इनका? लम यकुनिल्लाहु लियग़फिर लहुम, हरगिज़ नहीं है अल्लाह ऐसा कि उनको बख्श दे, वला लियहदियहुम सबीला, और ना उनको रास्ता दिखाएगा सीधा। ये है कुफर और ईमान की तकरार, पहले ईमान फिर कुफर, ईमान फिर कुफर, ईमान फिर कुफर। मैं इसको पढ़ती हूँ तो मेरे जहन में आता है गरम ठंडा, फिर गरम फिर ठंडा, एक घूंट गरम एक ठंडा, क्या होगा मैदे का हाल? चाय का एक सिप लीजिए और दूसरे हाथ में आप कोक में बर्फ डाल के एक सिप उसका लीजिए, अंदर का क्या हाल होगा? गल जाएगा ना। किसी खाने को चूल्हे से उतार कर एकदम फ्रिज में रखिए और 2 मिनट के बाद निकाल के फिर चूल्हे पर रखिए, फिर चूल्हे से उठाइए उधर रखिए, क्या वो खाना खाने के काबिल रहेगा? नहीं रहेगा ना। आप खुद घर के अंदर खूब टेम्परेचर पर रखें, खूब तप रहे, 2 मिनट अंदर खड़े हो, फिर घर का दरवाज़ा खोलें और बाहर चले जाएं गली में, 2 मिनट वहाँ खड़े हों ऐसे ही जैसे वहाँ अंदर खड़े थे, फिर 2 मिनट अंदर आए। गरम ठंडा क्या होता है? गर्मियों में क्या होता है? लू लग जाती है ना। बस इसी तरह समझिए कि ये कुफर और ईमान की आंख मिचोली है। जैसे आप देखिए कि कोई बल्ब है ना, लाइट ज्यादा आए तो एकदम तेज हो, फिर लाइट जाए तो कम हो, तेज कम, क्या होता है? जिन मुल्कों में बिजली की फ्लक्चुएशन होती है क्या होती है? बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। इतनी तेज बिजली आई फ्रिज जल गई, इतनी कम आई कि कंप्यूटर खराब हो गया। इसी तरह याद रखिए कि ईमान से कुफर एकदम नहीं आता। सफेद चीज एकदम काली नहीं होती, बीच में ग्रे के बहुत सारे शेड्स आते हैं। इसी तरह इंसान की जिंदगी में कुफर के ये सारे रास्ते कब आते हैं? जब छोटे छोटे निफाक के दर्जे आ चुके होते हैं। कोई डूबता है ना तो एकदम नहीं डूबता, डूब डूब के उबरता है, डूब डूब के उबरता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और बिल आखिर फिर डूब ही जाता है। इसी तरह एक मोमिन या मोमिन नस्ल में से पैदा होने वाला बच्चा एकदम कुफर में नहीं जाता। रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसे लोग बार बार सरवाइव करने की कोशिश करते हैं फिर गिरते हैं। आमनू क्या है? अच्छे दिन, नॉर्मल हालात। कफरू क्या है? मुश्किल आ गई, इनकार, वी कैंट, वी डोंट, जो भी खूबसूरत स्लोगन बोल लें, आपको क्या पता मैं कैसे करूं, मैं नहीं कर सकती, फिर हम जल जलाते हैं, आपको मेरी मजबूरी नहीं पता, डोंट बॉदर मी, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस दिस, इस तरह के हम क्रैंकी से जुमले बोल के खुद को मुतमईन करके सुला लेते हैं। असल में ये फ्लक्चुएशन हो रही है अंदर, अल्लाह मौके दे रहा है कि देखो अगर तुमने ये मुश्किलात में ईमान का दामन छोड़ दिया तो पलट जाओगे। एकदम नहीं पलटता बंदा, आहिस्ता आहिस्ता पलटता है, और पलटने वाले को पता भी कोई नहीं चलता कि ये मुझे पलटाया जा रहा है। वो कहते कोई मैंने छोड़ना है ना, क्या मैं काफिर हूँ, क्या मतलब है मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा? हाँ, शुरू में छुटती है ईशा, फिर फजर भी छुटती है, फिर फजर नहीं पढ़ी तो मैं तो आज बाकी जोहर असर भी नहीं पढ़ूंगा, मैं तो उस दिन बाकी पढ़ता हूँ जिस दिन फजर पढ़ता हूँ, फिर ये जुमले आते हैं। चलो हमने कौन सा बख्शे जाना है, अब एक गलत किया तो दूसरा भी कर लो, अच्छा मेरा तो रिस्क ही नहीं ठीक, मेरा तो हराम का बिजनेस है तो मेरी नमाज कबूल तो होनी कोई नहीं, मैं नहीं पढ़ता। आ मनु कफरो, आ मनु कफरो, पता नहीं आप इसको सुनते वक्त क्या कर रहे हैं, मुझे तो हर लफ्ज के साथ ऐसे महसूस हो रहा है कि दिल डूब रहा है, एकदम ब्लड प्रेशर हाई, फिर लो, हाई एंड लो। देखिए एक बैलेंस होता है, आप एक छोटा सा ग्राफ बनाइए, मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूंगी, थोड़ा सा मैथ में हमने ग्राफ बनाने सीखे हैं ना, आप एक सीधी लाइन खींच लें फिलहाल, अब आप एक सीधी लाइन खींचे और उसके बिल्कुल मिडल में जीरो लिख लें, इस तरफ जाएंगे अब जब उधर से राइट साइड पे तो 1 2 3 प्लस में जाते हैं ना। जैसे मिसाल है कि ये मेरे सामने जो कंप्यूटर रखा हुआ है और इसमें बस जब हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं ना तो इसकी ऑप्शंस होती हैं, आवाज़ को इंक्रीज कर ले, मिडल में रखें ना तो ये वो आवाज़ है जो मेरी इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है। सेव करने से पहले मेरे पास चॉइस मौजूद है कि मुझे लगा कि आवाज़ कम है तो मैं उसके नीचे जो माउस है ना उसको इधर इधर करेंगे ना तो +1 +2 +3 प्लस के साइन आएंगे, यानी आपकी आवाज़ बढ़ जाएगी, बढ़ा सकते हैं आप। कभी आवाज़ तेज़ ही रिकॉर्ड हो जाती है तब उसको डिक्रीज करना है, तो फिर उस 0 से इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 इस तरह, समझ आ रहा है ना। आप इस तरह से एक लंबी लाइन लगा लें, मिडल में 0 है, 0 क्या है, कुफर, नथिंग है ही कुछ नहीं, ये मिडल स्टेज होती है। इससे इधर जाएंगे ना तो ईमान बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आपके इधर जाएंगे ना तो निफाक बढ़ना शुरू होगा। बस आप देखिए कि जब कुफर से कोई निकलता है तो पहले दर्जे का ईमान +1 अबू बकर, +2 उमर, +3 उस्मान अली, और होते होते हमारे तक लेवल पहुंच जाता है। एकदम जो ईमान आता है A1 दर्जे का वो बढ़ गया, और आप जब कुफर से बैकवर्ड जाएंगे ना तो फिर निफाक जरूर आएगा। कुफर है खाली दिल, एम्प्टी हाउस, खलऊ की कैफियत, निफाक के नेगेटिविटी ऑफ इस्लाम। काफिर से ज्यादा मुनाफिक पे अल्लाह को क्यों गुस्सा है? काफिर के दिल में कोई जरूरी नहीं कि अल्लाह इस्लाम कुरान के बारे में नेगेटिव थॉट्स हो, लेकिन वो ग्राफ को देखे, काफिर मुनाफिक के दिल में नेगेटिविटी ऑफ इस्लाम है। पहले दर्जे का मुनाफिक रासुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई, उससे कम पे चले जाएंगे तो हो सकता है उसके 4 6 10 होते होते आज के दौर के जितने मुनाफिक हैं। इधर ईमान बढ़ रहा है, इधर कुफर बढ़ रहा है, बीच में कुफर है जो के सियाह धब्बे का नाम है। और जब दिल में निफाक होगा तो फिर क्या करो, इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा इज़दादू कुफरा, तो अब इनको पिछली आयत पे ले जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्ला। बात समझ रहे कि अगर दिल में निफाक है, ईमान था लेकिन नेगेटिविटी का था, तो इस निफाक को असली ईमान में बदलो, और अगर या अय्युहल्लज़ीना आमनू को कुफार के लिए कह दें तो फिर आमनू से मुराद क्या है, कलमा पढ़ लो, इस्लाम कबूल कर लो, अपने आप को इस चीज़ पर लेके आओ। आप देखिए कि अल्लाह ताला नहीं चाहते कि हम कुफर के अंधेरों में भटके, इसलिए अल्लाह ताला हमें हर मुमकिन तरीके से रग़बत दिला रहे हैं कि देखो मुनाफिक हो के ना मरना, वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, ईमान लाने के बाद कुफर में ना जाओ, ईमान लाने के बाद कुफर में ना जाओ। अच्छा, ईमान की भी एक अजीब दास्तान है, इस पे मैंने वैसे तो बहुत दफ़ा लेक्चर दिए हैं लेकिन एक पूरी सीरीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी मौके पे एक शॉर्ट कोर्स की सूरत में हम उसको कर लेंगे जिनके नसीब में हुआ। इतने इसके डिफरेंट एंगल हैं कि अल्लाह की पनाह। और मैं सोचती हूँ कि जैसे हमारे कल्चर में बग़ैर सीखे काम करने की आदत है ना, शादी भी हो जाती है और बाज़ दफ़ा पता भी नहीं होता कि एक दूसरे के हकूक़ जिम्मेदारियाँ क्या हैं, खाना भी लोग ऐसे ही सीख लेते हैं, अंदाज़ों से पकाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम ईमान की गाड़ी में बैठे हुए हैं पर अभी सीखा कोई नहीं है, ना इसके पुर्जों का नाम पता है, कहाँ से ईमान बढ़ता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन सी ईमान की ब्रेक है, कौन सा ईमान का स्टेयरिंग है और कौन सा उसका रोटेटर है। इसीलिए तो फिर बार बार लुढ़कते हैं, अनाड़ी तो फिर अनाड़ी होता है। अल्लाह ताला हम सबको कह रहे हैं देखो इससे पहले के दिलों पर मोहर लग जाए, आ जाओ अल्लाह की तरफ, वो तुमको पुकारता है। हर नेकी से ईमान बढ़ता है, कुछ छोटी छोटी टिप्स लिख लें 2 4, कोर्स तो जब ज़िंदगी रहेगी तब करेंगे लेकिन इस वक्त भी तो ज़रूरी है। नेकियां करने से ईमान बढ़ता है और गुनाह करने से निफाक बढ़ता है। कभी नेकी करें कभी गुनाह करें तो खलत अमलन सालेहन से एक डुप्लीकेटेड किस्म की या एक परेशान पर्सनैलिटी पैदा होती है। कुछ लोगों का हाल ये, नमाज भी कोई नहीं छोड़ते, फिल्म भी कोई नहीं छोड़ते, दुआएं भी बड़ी मांगते हैं और गालियां भी बड़ी देते हैं, बिल्कुल वही नेगेटिविटी कर ले, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आप देखिए एक फूल उगाएं और एक उतार दें बाग से, फिर एक नया लगाएं और एक उतार दें, क्या आपके फूलों की क्यारी बनेगी? आप बहुत फूल जमा करना चाहते हैं, क्या तरीका है? पहले जो पौधे लगाएं उनकी हिफाजत करें, फिर और भी लगाते जाएं, जो मुरझा रहा है पुराना हो रहा है उसकी जगह दूसरा रिप्लेस करते रहे, आपका नेकियों का बाग हरा रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, नेकियों के कामों से बाग लगाते हैं और गुनाहों के साथ हम नेकियों को ख़त्म करते रहते हैं। दूसरा ईमान में जो इजाफा होता है ना, वो मुश्किलात में होता है। तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबरा के उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इसके लिए इंसान को मुश्किलात को वेलकम कहना चाहिए। वो मुश्किल जिसके बाद आप दीन पे जमे रहें वो ईमान देती है, और वो मुश्किल जिसके बाद आप दीन से हट जाएं वो निफाक देती है। ये जो हम जम नहीं पाते ना, उसकी वजह क्या है कि हम मुश्किलों में जमने की बजाय पीछे हट जाते हैं। देखिए, इसके साथ ही मेरे जहन में मिसाल आ गई बर्फ बनने की। कभी आपने जेली बनाई है? गर्म पानी में डालते हैं, खुल जाती है, फिर उसको फ्रिज में रख देते हैं तो जम जाती है। कोई बर्फ के सांचे में पानी डाल के बर्फ बनाना चाहते हैं, थोड़ी देर फ्रीजर में, थोड़ी देर चूल्हे पे, थोड़ी देर फ्रीजर में, फिर चूल्हे में, चलेगी नहीं? होगी ना। बस यही आ मनु कफरू, आ मनु कफरू, ये तो पहली आयत है ना, बगली आयत है, देखिएगा इसके अंदर आपको और भी मिलेगा। जितना जमेंगे उतना इंशाल्लाह आपको ईमान मिलेगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि जिस दिन ईमान मिल गया उसके बाद फिर उसके तकाजे निभाने तो बहुत आसान है। अल्लाह ताला कहते हैं, ऐसी अगर हालत किसी की हो गई तो फिर उसको पहली बात है कि कोई बख्शिश की उम्मीद नहीं। खेल बनाया, मजाक करते हो अल्लाह के साथ, आँख मिचोली है। वला लियहदियहुम सबीला, यहाँ आपको जवाब भी मिल रहा है एक सवाल का, कि आखिर लोगों को इतना बताएं हिदायत की बात क्यों नहीं मानते, इतना डराते हैं फिर भी गुनाह नहीं छोड़ते। अल्लाह नहीं छोड़ने देता। वही बात जो बर्फ नहीं बनती, वही मिसाल है कि अल्लाह ताला नहीं करना चाहता क्योंकि वो सही रास्ते पे नहीं। अब ऐसे लोगों को क्या कहा जा रहा है? बशरिल मुनाफिकीन, खुशखबरियां सुना दो मुनाफिकों को। मजाक का अंदाज है, बुरी बात की कभी कोई खुशखबरी नहीं होती। लेकिन चूंकि इनके दिलों में निफाक था ना, ये बड़े चालाक और होशियार बनते थे। ये मुनाफिक का मसला पता क्या है, कि वो दुनिया के फायदे भी नहीं छोड़ना चाहता और जन्नत के भी लेना चाहता है, डबल डिलाइट। अल्लाह कहते हैं, ऐसे लोगों को समझा दो, तुम मुसलमान होते हुए कभी काफिर कभी मुर्तद बनते हो तो ये ईमान तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं, तुम्हारी ये बातें जो है तुम्हें फायदा कभी देंगी नहीं। तो यहाँ क्या है, बशरिल मुनाफिकीन, इन मुनाफिकों को बशारत दीजिए दर्दनाक अजाब की, बेअन्न लहुम अजाबन अलीमा। यहाँ आपको एक बात याद आई, सूरत बकरा में तीन गिरोहों का अंजाम था ना, मुत्तकियों का क्या था, फौलाएक हुमुल मुफ्लिहून, कुफार के साथ क्या आया, वलहुम अजाबुन अजीम, और मुनाफिकों के लिए क्या आया, अजाबुन अलीम, यहाँ भी अलीम है। और अलीम फईल का वजन होता है, कॉन्टीन्यूटी, मुसलसल। इसके दो मानी लिख लें, मुनाफिक का अजाब जहन्नम में कंटिन्यूस होगा। देखिए, बीमारी दो तरह की होती है, एक यह कि 15-15 मिनट बाद एकदम एक दर्द की लहर उठती है, लेकिन बीच में 14 मिनट मिल गए ना सूदगी के, और एक वो तकलीफ होती है जो मुसलसल कंटिन्यूसली पेन्स है। मुनाफिक की जहन्नम में सजा मुस्तकिल होगी, कंटिन्यूटी के मानों में और शिद्दत के मानों में। और तंज यह अंदाज है कि अजाब की इनको बिशारत दो, ये बहुत अकलमंद थे, बहुत फायदों के हरीज थे, लेकिन इनको ये पता ही नहीं था कि इनको तो दुनिया तो क्या मिलती, आज आखिरत भी नहीं मिली। यकीन कीजिए, मुनाफिक को लोग दुनिया में भी नहीं पसंद करते। वो सोच रहा होता है कि मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे लोग पसंद करते हैं, कोई नहीं करते। ऐसे बंदे का तो दिल हर जगह धड़कता रहता है, दीन की महफिल में आ गया तो डर ये है कि वो पार्टी वाले लोग ना देख लें ये कहाँ बैठी हैं, और अगर किसी डांस पार्टी में पकड़े गए तो उधर छुप छुप के देखते रहते हैं, कोई दर्स वाली तो नहीं मेरी बहन आ गई, कोई कुरान वाला तो नहीं मुझे देख रहा, कोई इंजॉय नहीं करता। मुंह पे लोग कहते हैं हॉट डैशिंग, बाद में कहते हैं देखा इन्होंने कुरान से क्या सीखा है। एक इज्जत की अब सूरत है कि रब के पूरे बन जाए, कभी इसके कभी उसके। आप देखिए, शादी होती है तो लड़की फोकस्ड हो जाती है ना, किसी के नहीं 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 मैं पूरी फोकस नहीं हूँ, स्टिल आई एम अवेलेबल। क्या वो खुश होगा इसकी बात से, कहेगा देखो कितनी धोखेबाज है, शादी के बाद भी शोहर के बारे में इसके जज्बात इस किस्म के हैं। तो अल्लाह ताला इंसान के दिल में ईमान को जमाने के लिए मुश्किलात लाता है। जैसे कोई काम शुरू में किया जाए ना तो उसको कच्चा पक्का करके छोड़ दिया जाता है, फिर अंदर जब चीज रचती है ना, फिर सख्त हाथों से आटा आप गूंथते हैं, कहते हैं आप बड़ा मुलायम होगा। शुरू में आप पानी में आटा घोल देना तो वो ऐसे फुटकियां फुटकियां बन जाएगा। थोड़ी देर पानी डाल दें, फिर आप जो हाथों के मुक्के मारते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला हमें मुश्किलात में डालता है ताकि देखो कि ये क्या बनते हैं। और उसके बाद जो बन के बंदा निकलता है, खुद भी आईने में अपनी शक्ल नहीं देख पाता, मैं वही हूँ, दिल मेरा वही है, सेहत मेरी वही है, मैं हर वक्त डॉक्टरों के आगे बैठी होती थी, मुझे क्या हो गया। लेकिन सबसे मुश्किल काम वही है जो मुश्किल में आके पकड़ जाना। बिल्कुल आप ऐसे ही समझे ना कि एक पेट में किसी के दर्द है, कोई रसौली है, अब रोज दर्द सहता है, तो एक दफा कोई उसको कहता है कि जाके ऑपरेशन करा लो, तो क्या कहते हैं लोग, नहीं नहीं ऑपरेशन का डर है मुझे, तो क्या कहेंगे भाई, 4 दिन का दर्द, बेहोशी करेंगे ना, फिर ठीक हो जाएगा। अब जो इस मशवरे पे अमल कर लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ते के बाद इतनी सेहत होती है, उसको याद ही नहीं रहता कि मुझे कभी दर्द होता था। जैसे वो ऑपरेशन रूम है ना, इस तरह ईमान के बाद ये आजमाइशें हमारा ऑपरेशन होता है। करवा लो बस, कदम कदम पे। वलनबलुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जूई व नक्स मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समरात। सूरह बकरा की आयत 155 में हम पढ़ चुके हैं, हम तो जरूर जरूर तुमको आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, मालों की कमी से, जानों के घाटों से, फलों में कमी होगी। और इसी तरह सूरत आल इमरान आयत 186 में अलल एलान बता दिया, लतुबलवुन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, और दोनों आयतें आप पढ़ चुके हैं। और अलबत्ता जरूर आज जरूर तुम आजमाए जाओगे अपने मालों के मामले में भी, अपनी जानों के मामले में भी। वला तस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, और पहले अहले किताब यानी दीनदारों से बातें भी बड़ी सुनोगे, तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगंडे भी बहुत होंगे, दूसरे दीनदार तुम्हारे बारे में गलत बातें भी आम करेंगे। वमिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा, और जो मुशरिक हैं उनसे भी बहुत सारी बातें सुनोगे। तो ये तो होगा, इस पे तुम अगर जम सकते हो तो बिस्मिल्लाह चल के आ जाओ। अब अगली आयत में निफाक की वजह, जब बंदा सोचता है कि अच्छा इतना कुछ होता है तो वजह भी तो कोई होगी मुनाफिक होने की, तो रूट कॉज ऑफ द निफाक एंड हिपोक्रेसीज 139, अल्लज़ीन तखिज़ून अल काफिरीन औलिया, जो अहले ईमान को छोड़कर कुफार को अपना दोस्त बना लेते हैं, मिन दूनिल मोमिनीन, यानी निफाक की वजह कुफार से दोस्ती, उनका रंग ढंग, उनका कल्चर, उनका स्टाइल, उनकी सोच से सोचना, उनके रंग से देखना। आप देखिए कि मुनाफिक क्या करते थे, मुसलमानों के साथ तो हुए, तभी तो मुसलमान हुए ना, नबी के साथ आए, लेकिन कुफार से दोस्तियां नहीं छोड़ पा रहे थे। और अपनी अकल से क्या सोचते थे, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सारे अंडे एक बास्केट में ना डालो, सारे टूट जाएंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि एक बास्केट को होल्ड कर लोगे तो इंशाल्लाह नहीं टूटेगी, और आधे एक में और आधे दो में रखोगे, हो सकता है दोनों टूट जाए। यहाँ कल का सबक याद कर लें, हनीफन और हलील वाला, सब ताल्लुकात, सारी दोस्तियां जब तक फोकस्ड होके अल्लाह और उसके रसूल के साथ नहीं होती, कुछ नहीं होगा। लेकिन मुनाफिक क्या सोचता है, क्या पता कल हालात क्या हो, पता नहीं हालात का पलड़ा किधर झुक जाए, फिर अभी रिश्ते भी तो करने हैं ना, फिर सोच लो, लेट सी व्हाट हैपन, करनी है तौबा बाद में कर लेंगे, अभी शादी हो जाए, करना है निकाह हिजाब, फिर एक और मसला निकाब कर लिया जी, अब तो रिश्ता बिल्कुल नहीं मिलना, आप करके देखें आपको अल्लाह वो दे देगा जिसके इंतजार में अल्लाह ने आपको आज तक बिठाया हुआ था। आपको क्या पता अल्लाह ने आपके नसीब में क्या हीरा रखा हुआ, अभी आप नहीं तरसी। देखिए अंगूठी होती है ना, तो इसके अंदर दो हिस्से होते हैं, अंगूठी होती है और डायमंड है। जितना कीमती डायमंड होता है ना, उतनी भारी रिंग रहते हैं हम लोग, क्योंकि उसको उसके अंदर डालेंगे गिर ना जाए, उसका बाहर का सांचा भी बहुत भारी रंग बनवाते हैं। और अगर आपने कोई झूठा सच्चा नग लगवाना है, आप कहते हैं पीतल में लगवा दो, ऊपर रंग डाल देंगे, क्या होता है। कच्ची चीजें जो होती है ना, अल्लाह कच्चे लोगों के हाथों में दे देता है, जाने दो। लेकिन कुछ बच्चियां बड़ी कीमती हो जाती हैं वक्त के साथ, इस तरह कूट कूट के उनके अंदर ईमान आता है, फिर अल्लाह उनके लिए कीमती सांचा बनवाता है। ये तो मैंने और आपने अपनी वैल्यू बनानी है, और कहीं पत्थर असली, आपके असली भी है नकली भी है, कभी ये असली बन जाता है कभी नकली, आप बताएं कोई कस्टमर खरीदेगा उसको, या असली है या नकली है। असली है तो असली की कीमत दो, और नकली है तो फिर नकली की कीमत दो। मोमिन असली हीरा है, सच्चा हीरा उसकी चमक पानी से भी नहीं खत्म। कपड़े धो लो, खाना पका लो, आटा गूंद लो, किसी जगह चले जाओ, देखिए असली सोना खराब नहीं होता। और नकली को पानी झूठा सा लग जाए, पसीना लग जाए, कहते इसको क्या हुआ, इसका रंग बदल गया। नुकसान क्या होता है, हम अपने अंदर निफाक का खोट करके हम खुद को डिवेल्यू किया होता है। एक होता है 24 कैरेट गोल्ड, 22 लगा ले चले, और एक होता है 17 कैरेट, 15 कैरेट, जो यहाँ की अमूमन ज्वेलरी में देखा गया है। क्या होता है, जमीन आसमान का फर्क है, बिकती वही चीज है। आप देखिए सोना टूट के कुचर मुचर हो जाए, ज्वेलर के पास जाएंगे कई हजार का बिक जाएगा। और नकली चमकती हुई चीज है ले जाओ, कहेंगे जी बाजी ये झूठी है, ये नकली है। तो मोमिन असली होता है, सिर्फ ऊपर वनीर चढ़ाने से कभी सच्चा मोमिन नहीं बनेगा। मटेरियल अंदर से आप अपने आप को करें, लेकिन शर्त यह है कि ये दो रुखापन छोड़ना पड़ेगा। वली फिर अल्लाह को बनाओ, फिर अल्लाह से मोहब्बत करो। और अमूमन लोग इन कुफार के तरीकों से दोस्ती क्यों करते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे अल्लाह ने चोरी पकड़ ली। अयबतगून इंदहुमुल इज्जत, क्या वो इनके पास इज्जत चाहते हैं, इज्जत पाने के लिए कुफार के पास जाते हैं। इनके कपड़े पहन लेंगे तो बड़ी इज्जत हो जाएगी, इनका रंग ढंग अपना लेंगे तो बड़ी इज्जत हो जाएगी, इनकी बातें मान लें जरा मॉडर्न हो जाएंगे तो बड़े अच्छे लगेंगे, इनसे हाथ मिलाया। अमूमन देखिए लोग अल्लाह और उसके रसूल के तरीके क्यों छोड़ते हैं, कि बेइज्जती होगी। मिसाल है, मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल सीधी सी बात है, निकाब पहन के किसी बड़े होटल में जाना कितनों को मुमकिन लगता है, और स्कर्ट में और बहुत खूबसूरत लश लश करते हुए जाना, कहते हैं क्या वो इज्जत चाहते हो, इसलिए अपनी पार्टियों में सच संवर के जाते हो, चाहे उसकी कीमत में तुम्हारी जान चली जाए, अल्लाह जब पकड़ेगा तो पकड़ लेगा, लेकिन इज्जत चाहते हो। मिक्स गैदरिंग इज्जत का मसला, म्यूजिक के बगैर शादी नहीं हो सकती इज्जत का मसला, इज्जत कहाँ की आ गई। अल्लाह कहते हैं फाइनल इज्जत अल्लाह जमीया, बेशक इज्जत तो अल्लाह की है, अल अजीज वो है, इज्जत के खजाने उसके पास है, उसको छोड़कर इज्जत मांगते हो।